ये आकाशवाणी है। अब आप भवतारिणी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के अमरेली में 4,900 करोड़ रुपए लागत की परियोजना का शुभारंभ और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जल संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि गुजरात ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान व्यापक बदलाव और बहुमुखी विकास का दौर देखा है। विकास के इसी दौर में सौराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पानी पहुंचाना संभव हुआ, जिससे किसान समृद्ध हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है वे सौराष्ट्र, कच्छ, जूनागढ़, पोरबंदर और बोतार जिलों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होंगी। प्रमुख परियोजना में 101.4 किलोमीटर की भुज नलिया रेल लाइन का गेज परिवर्तन, राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन का बनाना और अन्य विकास परियोजनाएं शामिल हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने गुजरात के वडोदरा में C-295 सैन्य विमान के विनिर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये भारत में सैन्य विमान के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स वैश्विक वैमानिकी विनिर्माण में एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत बनाता है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि एयरबस और टाटा के बीच की साझेदारी भारतीय वैमानिकी उद्योग की प्रगति में योगदान देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के बीच आज गुजरात के वडोदरा में शिष्टमंडल स्तर की बातचीत में विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने संयुक्त वक्तव्य में संवहनीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन नियंत्रण उपायों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव तन्मय लाल ने संवाददाताओं को बताया कि दोनों देशों के बीच विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें रेल परिवहन, सीमा शुल्क, निवेश के लिए वित्तीय व्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं पर लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत आएगी। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कल आखिरी दिन है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सहित विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने आज नामांकन पत्र भरे। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 25 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अब तक 146 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 7 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज पूरी हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस चरण के लिए 805 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। जम्मू में अखनूर सेक्टर के बट्टल गांव में आज सेना की एम्बुलेंस पर हुई हमले की जवाबी कार्रवाई में सेना ने एक आतंकवादी को मार गिराया। हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि आतंकवादी का शव बरामद कर लिया गया है। लगभग 3 आतंकवादियों ने सुबह लगभग 6 बजे सेना के काफिले की एक एम्बुलेंस पर गोलीबारी की। हमले में किसी जवान के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को तटीय कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में भी अगले 3-4 दिनों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा और बिजली गिरने की संभावना है। भारत ने कल AFC 17 फुटबॉल एशिया कप 2025 क्वालिफायर के रोमांचक मुकाबले में थाईलैंड को कड़ी टक्कर दी, लेकिन उसे 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार का मतलब है भारत को अगले दौर में आगे बढ़ने के लिए अपने ग्रुप के मैच के नतीजों का इंतजार करना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।